हमारे मध्य हैं आदरणीय राजयोगी सुशील भाई जी। आप पिछले 30 वर्षों से आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं। एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपने सोनी कंपनी में 14 वर्ष तक अमृतसर पंजाब में अपनी सेवाएं दी और सन 1999 से आप समर्पित रूप से यहाँ पर मधुबन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर आप पब्लिक रिलेशन ऑफिस में आपकी सेवाएं होती हैं, मीडिया रिपोर्टिंग की सेवा भी करते हैं, साथ ही साथ आप सोशल विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर के नाते से बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं हमारे ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा की हर प्रकार की गतिविधियों के सहित। तो हम आदरणीय सुशील भाई जी से आज सुनेंगे समय की। ओम शांति।
ओम शांति। कहा जाता है मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, तो वास्तव में वो इस संगम का गायन है। सारे कल्प में हमें केवल ये छोटा सा समय मिला है जिसमें हमको समझ मिलती है, मनुष्य को समझदार माना जाता है। तो वास्तविक समझदार बाबा ने हम सब बच्चों को बनाया है, तो हम सबका परम सौभाग्य है कि समझ का नेत्र भगवान ने हम सबको अर्पित किया हुआ है। उस नेत्र को हम कितना खुला रखते हैं, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उस नेत्र का हम कितना फायदा लेते हैं, कितना सच्ची कमाई करते हैं, हमारी आंतरिक जो विकृतियां हैं, विसंगतियां हैं, उनसे हम कितना मुक्त होते हैं, उसके लिए भगवान ने वरदान दिया हुआ है। इस संगम को वरदान है। जितना हम अपने आप को ऊंचे से ऊंचे बनाने चाहे बना सकते हैं, बहुत मार्जिन है। समय सबसे बड़ी पूंजी है। वो कहते हैं जो समय का कदर करता है समय भी उसी का कदर करता है। एक बार समय हमारे हाथ से निकल गया तो दोबारा आएगा 5000 वर्ष बाद, लेकिन फिर उसी दुख के साथ आएगा। वो जिस समय को हमने जैसे बिताया है, दुख और सुख के रचता हम स्वयं हैं। तो अभी एक शक्तिशाली योग में सुखदाता की सुखों की बरसात हो रही है, वरदानों की बरसात, इसी स्मृति में बैठेंगे। गीत सुना समय की पुकार, मुक्ति धाम जाना है। फिर कहाँ जाना है? सतयुग में। तो सतयुग अच्छा कि संगम अच्छा है? बार बार से अच्छा कि अंदर से अच्छा कह रहे हो? पक्का? जब परिस्थिति आती है तो और ज्यादा याद आता है। तो हमें समय की पुकार तो बहुत कुछ कहती है। समय की पुकार क्या कहती है? पर चिंतन करो, मोबाइल में डूबे रहो, रोते रहो, छोटी छोटी बातों को फीलिंग करते रहो, टाइम वेस्ट करो, लेकिन करते तो हम सब हैं, इसको हम साइड में रख रहे हैं। अगर ये सब चीजें हैं तो जीवन का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि जो हमें करना चाहिए वो हमें कर रहे हैं, क्योंकि पुरुषार्थ बड़ा सूक्ष्म है और बहुत सहज है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी अवज्ञाएं हमारी खुशी को कैद कर लेती हैं, छीन लेती हैं। ब्राह्मण जीवन में खुशी गायब हो तो ब्राह्मण जीवन कहेगा? सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। और मर्यादा भी हम सबको पता है, श्रीमत भी पता है, आज्ञाएं भी पता है, नियम भी पता है, लेकिन फिर भी रावण का परसाया हमारे पर मंडराता रहता है स्वभाव संस्कार के रूप में, पुरानी बातों को पकड़ के रखा हुआ है, होल्डिंग नेचर। व्यर्थ संकल्पों का इधर उधर तूफान चलता रहता है। कोई है जो व्यर्थ संकल्पों से बिल्कुल मुक्त हो गया है? अब उनसे छूटना कैसे है? क्योंकि अक्सर तो हम यही सुनते रहते व्यर्थ संकल्प नहीं करने चाहिए, लेकिन छूटे कैसे? तो समर्थ संकल्पों का खजाना अगर हमारे पास है तो व्यर्थ से अपने वैराग्य आएगा। जब तक किसी चीज के महत्व का हमको पता नहीं है तब तक हम पुरानी अपनी आदतों को छोड़ते नहीं है। जब ज्ञान के एक एक बिंदु का महत्व पता चल गया, समय का पता चल गया कि समय अमूल्य खजाना है, आज का स्लोगन था, क्या स्लोगन था? समय को वेस्ट नहीं करो, पूरा का पूरा स्लोगन। चलो आज का नहीं आता, कल का बताओ क्या था। कल का नहीं आता, परसों का बताओ। समय अमूल्य खजाना है, इसलिए उसे नष्ट मत करो, समय को फौरन निर्णय कर सफल करो, फौरन तुरंत। तो तुरंत निर्णय करना कि आज से व्यर्थ खत्म, लेकिन उसके लिए कुछ अटेंशन रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि में बहुत खजाना भरा हुआ व्यर्थ का भी, उससे प्यार भी बहुत है। लंबे समय से वो संस्कार व्यर्थ के, उससे इतनी हमारी अटैचमेंट है कि पर चिंतन करने बैठते हैं तो समय घंटों घंटों बीत जाता है, और उसमें सुख भी बहुत मिलता है। ऐसा नहीं सुख नहीं है, सुख उसमें भी है, लेकिन वो सुख उतने समय का ही है, उसके बाद तुरंत दुख चालू होता है। जितना समय पर चिंतन करते रहेंगे अच्छा लगेगा, क्योंकि सामने वाला साथ दे रहा है, लगता हमारे साथ कोई ऐसा और भी तो है, चार पांच लोग बैठ जाएंगे और थोड़ा संबल मिलता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, इंटरेस्टेड हो जाता है। लेकिन जैसे हम अकेले होंगे तो दुख तभी चालू हो जाएगा, और वो छोटे छोटे दुख का बोझ हमें दबाता रहता है, हमारी खुशी को लेकर भाग जाता है, भगवान से दूर कर देता है। जो परमात्म प्यार की अनुभूति होनी चाहिए, जो जीवन में विघ्न भस्म हो जाने चाहिए थे, हमने खुद ही विघ्नों को आमंत्रित कर लिया है। तो ये जो पात्र है, इस पात्र के अंदर क्या भरना है? बाबा कहते ज्ञान रत्न भर के रखो, क्योंकि ये पात्र अभी किसका? भगवान का दिया हुआ पात्र है। अगर इसमें गंदगी भरेंगे तो बहुत वो चढ़ जाएगा। भक्ति में कहा तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। अब प्रैक्टिकल में है, अगर ये तन उसका है, मन उसका है, धन उसका है, तो इस मन रूपी बर्तन में मैंने क्या क्या भर के रखा हुआ है? अभी भी वो पुरानी स्मृतियां, पुराने विचार, पुरानी परंपराएं, पर चिंतन, पर दर्शन, उसी को अगर इस पात्र के अंदर भर के रखा तो बीमारियां तो हमारे आसपास ही मंडराती रहेंगी, दुख, एंग्जाइटी, बेचैनी, उदासी, मूड ऑफ, अकेलेपन अनुभव होना, इतना कुछ ज्ञान समझ में आने के बाद भी खाली खाली लगना, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, जो दूसरे के प्रति हमारी शुभ भावनाएं पता नहीं है ही नहीं है, वो ऊपर ऊपर से कहते हैं, लेकिन सब जब तक हमने स्वयं के प्रति शुभ भावनाएं रखे, दूसरे के प्रति जागृत होगी नहीं कहीं। स्वयं के ऊपर रहम करने की आवश्यकता है। तो समय की सबसे पहली पुकार है स्वयं पर रहम करना, दूसरों पर रहम तो बाद की बात है, स्वयं के ऊपर हम कितना रहम कर रहे हैं? सवेरे से लेकर रात्रि तक हमको कितना टाइम मिलता है? 1440 मिनट 24 घंटे में, उसमें से हम कितना उसको सफल करते हैं? अमृत वेले से लेकर अभी तक कितना टाइम बीत गया? कितना खजाना वेस्ट हो गया होगा जो विधि पूर्वक हमको करना चाहिए था सफल? एक हम खाना पूर्ति कर देते हैं, प्रेजेंट लगी, यस, परिवर्तन कहां हो रहा है? हमारे संस्कार परिवर्तन कहां हो रहे? उसके लिए खुद से जुड़ना पड़ेगा, खुद से खुद ही बात करनी पड़ेगी, खुद को ही पढ़ाना पड़ेगा। क्लास हम जितनी मर्जी कर लें, जब तक हम स्वयं की क्लास स्वयं नहीं कराना सीखे तो दूसरे की क्लास का इतना महत्व नहीं होगा, वहां तक ही उसकी अनुभूति होगी। वहां तक ही अच्छा लगेगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मुरली में बैठेंगे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे मुरली से बाहर गए तो बाह की बाह, क्योंकि हमने स्वयं से जुड़ना नहीं सीखा है। समय की पुकार है स्वयं को परिवर्तन करना, संसार को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही हो जाएगा। स्वयं को अच्छा बना ले तो सब अच्छे लगेंगे, स्वयं खराब है तो चाहे सामने वाले में सब अच्छा ही है, सारी खराबियां दिखेंगी। सारा काम स्वयं के ऊपर करना है, स्वयं के बुद्धि रूपी पात्र को ज्ञान रत्न से भरपूर रखना है, कोई भी कोना खाली न रहे। समय बड़ा कीमती है, समय बहुत बलवान है, एक एक सेकंड। बाबा कहते हैं अगर एक सेकंड व्यर्थ गया तो है जी पद्मों की कमाई गई, और एक वर्ष चला गया। एक सेकंड व्यर्थ गया तो एक वर्ष चला गया, और 5000 सेकंड व्यर्थ गए तो पूरा ओम शांति हो गया। अर्थात समय का महत्व है वो, क्योंकि इस समय हम चोटी पर हैं, शिखर पर हैं, ऊंचाई पर जाने से मजा आता है ना, तो इसमें हम सबको सारी नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को स्वरूप में कितना लाया हमने, वो नॉलेज हमारी कर्मेंद्रियों में कितनी समाई है। हमें सोचना ना पड़े कि सामने वाले को आत्मा देखना है, आज इतने को आत्मा देखे, आज इतने को देखे, इससे परे व्यापक आत्मिक दृष्टिकोण, लंबे समय की व्यक्तिगत साधना चाहिए। इसके लिए कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, इसके लिए टाइम की आवश्यकता नहीं है, स्थान की आवश्यकता नहीं है। जहां भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, हमारी आंतरिक वृत्ति कैसी है, उस वृत्ति को हमने कितना पक्का किया है, वो हमारी आत्मिक वृत्ति कैसी है। अगर आत्मिक वृत्ति हमारी पक्की है तो सामने वाला कोई कैसा भी हो, दिखाई तो बॉडी देगी लेकिन हलचल में नहीं आएगी कर्मेंद्रियां, क्योंकि कर्मेंद्रियों में वो ज्ञान समा गया हुआ है, वो आत्मिक वृत्ति रग रग में बस गई है। एक एक थोड़ा ऐसे ऐसे देखने लगी आत्मा ही आत्मा। 24 आवर हमको हजारों लोगों के साथ में संबंध संपर्क में आना होता है, सबका कर्म क्षेत्र अपना अपना है, इसलिए सवेरे का जो हमारे पास टाइम होता है भगवान उसमें पुकार करता है, आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ, वो हमारे द्वार खटखटा रहा है, भाग्य का भंडारा लेकर खड़ा है, स्वयं भाग्य विधाता है, जितना चाहे ले लो, जितना चाहे वरदानों से अपने आप को संपन्न कर लो, लेकिन वो देने के लिए हम मांगते रहते हैं, बाबा शक्ति दो, या किरणें आ रही हैं जा रही हैं, नहीं, उसके स्वरूप ऐसा अनुभव करना है। बाबा ने कहा जो बच्चे सच्चे दिल वाले हैं या महारथी हैं, वो बाप को स्वयं में समाकर सेवा करते हैं, वो जैसे बाप का स्वरूप है। तो हमें इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, इतने वर्षों से हमारी रूहानी यात्रा चल रही है, इस आध्यात्मिक यात्रा में हमें कितना कुछ ज्ञान के खजाने हमने प्राप्त किए हैं, उनको जीवन में कहां ला रहे हैं, उनका स्वरूप कहां बन रहे हैं, उसके ऊपर गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहली बात है इसमें पुकार है आत्म चिंतन करना। पर चिंतन बहुत कर लिया, पर चिंतन से क्या मिला, दुख, धोखा, बेचैनी, पता भी है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। बाबा कहते मैं सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन बच्चे माया को सर्वशक्तिवान समझ लेते हैं उस समय। बाबा कहते हैं मेरे पास केस दाखिल करो, मैं तैयार हूं आपके केस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन बच्चे केस मुझे देते नहीं तो मैं क्या करूं, बच्चे अपने व्यर्थ का बोझ मुझे देते नहीं, कम से कम फाइल तो लगाएं, वो तो भगवान सामने से अपील कर रहा है, लेकिन हम अपना उसको व्यर्थ देने के लिए तैयार ही नहीं है। अर्थात उसके समर्थ खजाने को अपना हम कितना महत्व दे रहे हैं। तो ज्ञान हमारे कर्मेंद्र में समा जाए उसके लिए आत्म चिंतन करना है। अर्थात अगर मुझे भगवान ने पहचाना है तो मेरे में कौन कौन सी खूबियां हैं, क्योंकि किसी साधारण मनुष्य ने हमारी पहचान नहीं की है, किसी को साधु संत ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा है, कोई धर्मात्मा ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा है, किसने हाथ पकड़ा है, स्वयं परमात्मा ने सुप्रीम अथॉरिटी ने आकर पकड़ा है। उसको हमारी जरूरत थी इसलिए उसने पकड़ा, इसलिए बाबा क्या कहते तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तीन चार पहले दिन मुरली में था, बाबा कहते मैं चाहे एक सेकंड में विनाश कर सकता हूं लेकिन मुझे तुम बच्चों की मदद चाहिए। वो तो हमारा भाग्य बनाने के लिए कह रहा है। तो हम अपने आप को कितना प्राथमिकता देते हैं, भगवान को प्राथमिकता देते हैं, अपने आप को प्राथमिकता नहीं देते हैं। बाबा के ऊपर पूरा निश्चय है कि वो प्यार का सागर है, लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम भी मास्टर प्यार के सागर हो, लेकिन हम मानते नहीं है, उसको हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। भगवान कह रहा है कि तुम में सारी शक्तियां समाई हुई हैं, लेकिन हम स्वीकार ही नहीं करते। वो स्वयं कह रहा है तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, लेकिन अनुभव ही नहीं होता है, क्योंकि स्वीकार ही नहीं किया हमने, एक्सेप्ट ही नहीं किया। अपने ऊपर निश्चय की कमी है, स्वयं के ऊपर निश्चय की कमी है, सोमान से गिर जाते हैं, इसलिए फिर अपमान की फीलिंग आती है, मान शान की इच्छा का कटोरा लेकर हम घूमते रहते हैं, कहीं से मान मिल जाए, प्यार मिल जाए, इच्छा मिल जाए। भगवान के बच्चे हैं इसलिए बाबा कहते हैं अपने हमेशा सम्मान की सीट पर सेट रहो। हमारी स्मृतियों में कहीं ना कहीं कमजोरी रहती है, स्मृतियां हमारी जो पावरफुल होनी चाहिए, और वो पावरफुल होंगी उसके लिए बाबा कहते ज्ञान का धूप, योग का धूप, ज्ञान का जल देते रहो, देते रहो, देते रहो। जिसके लिए बाबा एग्जाम्पल देते हैं गाय का क्या करती है, उसको भी कितनी समझ है जानवर को, अगर वो जुगाली निकल के तो बीमार हो जाएगी। और हम मनुष्य हैं इतने समझदार, भगवान ने समझदारी का हमको वरदान दिया हुआ है, ज्ञान दिया हुआ है, जुगाली करो, उसको चबाओ, हजम करो ज्ञान को, लेकिन हम सुनने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्रवचन नहीं है, ये कोई संसारी कथा नहीं है। इस ज्ञान के साथ प्यार चाहिए, उसको चबाना अच्छी तरह से, और ऐसा नहीं है एक मुरली सारी याद हो जाए, कोई भी दो ही शब्द आ जाए, मीठे बच्चे बाकी सारा छोड़ दो, खाली मीठे बच्चे पर पूरा चिंतन करो, भगवान ने मेरे में कौन सी मिठास देखी है जो उसने स्वयं मुझे मीठे बच्चे कह पुकारा है, जरूर कुछ तो है, कुछ तो गुण है, तभी तो उसने मीठे बच्चे कहा, दूसरों को क्यों नहीं कह दिया, संसार में इतनी करोड़ आत्माएं 800 करोड़, केवल हमको मीठे बच्चे कहा, कलकत्ता के राय बगान, राजा राय बगान में आके ढूंढ के कहा, यही मीठे बच्चे हैं, दूसरे नहीं है, लेकिन उस मिठास को हम पहचानते नहीं है। मीठे बच्चे के ऊपर ही सारा दिन चिंतन करो, ओहो भगवान आपने मुझे मीठे बच्चे कहा, उसको लिखो, थैंक्स करो उसको, लेकिन हम कंप्लेंट करते रहते हैं कि मिठास तो अनुभव होती नहीं है, मिठास तो हमारी रग रग में समाई हुई है, हमारी दृष्टि मीठी, जो बाबा कहते तुम्हारी दृष्टि मीठी होनी चाहिए, तुम्हारे बोल में मिठास होनी चाहिए, तुम्हारी व्यवहारिकता में मिठास होनी चाहिए, तुम्हारी चलन में मिठास होनी चाहिए, पग पग में मिठास समाई हुई है। भगवान क्या है, स्वीट का पहाड़ है वो, तो उसके बच्चे क्या होंगे, स्वीट स्वीट मास्टर स्वीट का पहाड़ है, लेकिन चींटियां ना खा जाएंगे, ध्यान रखना पड़ेगा। जो उसके गुण है वो हमारे में सारे समाये हुए हैं। हाथी के बच्चे के संस्कार चूहे जैसे होते हैं, शेर के बच्चे के संस्कार गधे जैसे होते हैं, तो हम किसके बच्चे हैं, सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा की संतान है, तो संस्कार कैसे होने चाहिए, हैं कैसे हैं, वैसे ही हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। जो मेरे पिता के संस्कार है वो मेरे संस्कार हैं, इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता तुम्हारे निजी संस्कार हैं, क्योंकि पवित्रता के सागर की संतान है। संसार में भी मानते हैं भगवान के बच्चे हैं, भले नाम रख लेते हैं लक्ष्मी नारायण, नाम रखते हैं राम कृष्ण, लेकिन लक्ष्मण सारे रावण जैसे हो जाते हैं, लेकिन बाबा तुमको प्रैक्टिकल में कह रहे बच्चे तुम ये बनते हो, ये अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो हमें अपने प्रति वो पूरी सजगता चाहिए कि हु एम आई, मैं आत्मा हूं, लेकिन आगे उसकी उसका श्रृंगार करना है, इसलिए बाबा कहते सुमान की माला पहन के रखो, तिलक हमेशा चमकता रहे, मस्तक पर तिलक हमेशा चमकता रहे। कौन सा? समर्थ स्मृतियों का तिलक। ये वाला तिलक लगाने से कुछ नहीं होगा, भले भट्टी में स्मृति का तिलक लगा दिया लेकिन बाद में स्मृति भूल जाती है, तिलक ही रह जाता केवल कि किस लिए हम भट्टी करने आए, वो ही भूल जाता है। समर्थ स्मृतियों का अंदर में सागर उछलता रहना चाहिए, मैं हूं कौन, हजारों सुमान अंदर उसकी लहरें चलती रहनी चाहिए, तुरंत याद आए, एक सेकंड भी बीच में ब्रेक ना हो योग से। उसको याद करना केवल बिंदी को देखना नहीं है, उस बिंदी से क्या क्या निकला है, उस बिंदी ने जो ब्रह्मा के मुख द्वारा उच्चारित किया है उस वो मुझ आत्मा में कितना समाया है, कौन कौन से उसके मुख से ज्ञान रत्न निकले हैं, कौन कौन से खजाने निकले हैं, कौन कौन सी शक्तियां निकली हैं, कौन कौन से सोमान निकले हैं जो सीधा मेरे में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात वो मेरी स्मृति में है। कितने बाबा टाइटल देते हैं, बच्चे तुम स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, सफलता मूर्त हो, विजय रत्न हो, शांति के अवतार हो, प्रकाश पुंज हो, देवकुल की महान आत्मा हो, वरदानी आत्मा हो, आधार मूर्त हो, धार मूर्त हो, राजऋषि हो, विश्व कल्याणकारी हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो, माया जीतो, कर्मेंद्र जीतो, प्रकृति जीतो, नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल, महावीर आत्मा हो, मास्टर भगवान हो, शिव शक्ति हो, लेकिन जैसे छिपकली आती है तो शक्तियां पत्री कहां चली जाती है। तो स्मृतियां अंदर में घूमती रहनी चाहिए। तो अभी एक छोटा सा हम खेल करेंगे साथ साथ में, और वो खेल को खेल नहीं समझना, ऐसे महसूस करना वो सारा परमात्म पावर हमारे अंदर समा रही है, क्योंकि हमें इन कर्मेंद्रियों को भी योगी बनाना है। ये हमारा चलता, ये सबसे बेस्ट लाइफ है ये वाली शरीर में, क्योंकि इस शरीर में भगवान हमारे साथ मुलाकात करता है, देवता इस शरीर में भगवान मुलाकात नहीं करेगा, देवताओं से उत्तम ये वाला तन है, इसकी महिमा ज्यादा है। भले उनके नयन कमल कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में अनुभूति अब की हुई है। तो सबसे पहले स्मृति का तिलक लगाएंगे सभी अपने मस्तक में, स्मृति का तिलक लंबा सा सभी लगाएंगे, और इसको याद रखना है स्मृति का तिलक, और अंदर ही अंदर स्मृति लाओ कि मैं हूं कौन, सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, सूर्य की भांति चमक रहा हूं, प्रकाश परमात्म शक्तियों से फुल चार्ज हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, राज ऋषि हूं, अखंड तपस्वी हूं, लाइट ऑस माइट ऑस हूं, संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं, परम पवित्र आत्मा हूं, ज्ञान सूर्य हूं, परमात्म शक्तियों का अखुट भंडार हूं, महसूस करो मैं आत्मा अंदर में चमक रही हूं। तो पहला हो गया स्मृति का तिलक, हो गया पक्का। तो जब भी अगर नींद भी आने का चांस हो, क्योंकि नींद तो आएगी आएगी ऐसा नहीं कह सकते, तो हाथ को ऐसे करते, घर में जब भी अकेले योग करते हैं ना तो ऐसे ऐसे करते स्मृतियों का तिलक लगाते रहो, कम से कम नींद से तो मुक्त हो जाएंगे उस समय, कुछ तो हमारा मन चलेगा, नहीं तो खाली ऐसे बैठे रहेंगे, नींद आने के बहुत चांस रहते हैं। इसलिए योग में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए, कुछ नवीनता चाहिए। बाबा कहते तुम नवीनता के सूर्य हो, एक मुरली में अव्यक्तवाणी में तुम नवीनता के सूर्य हो, हर चीज में नवीनता चाहिए, संडे की मुरली में है, तुम्हें एडिशन करना है, नवीनता करनी है हर बात में, क्योंकि एक ही चीज से बार बार व्यक्ति खा खा के बोर हो जाता है, मुरली को उसी तरीके से सुनेंगे बार बार बोर हो जाएंगे, इसलिए कुछ नवीनता चाहिए। तो पहला हो गया स्मृति का तिलक, फिर से लगाओ स्मृति का तिलक, ये एक नंबर पक्का कर लेंगे स्मृति का तिलक। दो नंबर पवित्रता का ताज रखो आप सभी ऐसे, मेरे सिर पर पवित्रता का ताज स्वयं बाप दादा ने रखा है, महसूस कीजिए मेरे पास में बाबा खड़े हैं, अव्यक्त बाप दादा, और मेरे सिर पर संपूर्ण पवित्रता का ताज रखा है, चमक रहा है, श्वेत श्वेत किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, रतन जड़ी ताज, संपूर्ण पवित्रता का ताज, फीलिंग में रहें, गहरी महसूसता हो कि मेरे सिर पर पवित्रता का ताज चमक रहा है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ, रग रग में पवित्रता समाई हुई है, चारों तरफ मुझ आत्मा से पवित्रता की शक्तिशाली श्वेत श्वेत किरणें फैल रही हैं, संसार के अंतिम कोने तक पहुंच रही हैं। तो दो नंबर पवित्रता का ताज, एक नंबर क्या था, स्मृति का तिलक, तिलक लगाते अनेक स्मृतियां आती जानी चाहिए। दो नंबर पवित्रता का ताज, तीन नंबर आत्मिक दृष्टि का काजल, लगाएंगे सभी काजल अच्छी तरह से, दूसरा काजल लगाते ना कोई को तो लगाते होंगे ना, अब ये भी लगा लो आत्मिक दृष्टि का काजल, लंबा सा लगाओ थोड़ा बाहर देखना चाहिए, दूसरों को भी पता चले लगाया हुआ है कि इन आंखों से आज के बाद अभी से ही आत्मिक दृष्टि रहेगी पक्की। तो एक नंबर क्या था, स्मृति का तिलक, दो नंबर पवित्रता का ताज, तीन नंबर आत्मिक दृष्टि का काजल, हो गया पक्का, तो तीन पक्के हो गए। चार नंबर साकारी, बारे में ब्राह्मण आत्मा, सब लगाओ जोर जोर से, जोर जोर से गुड्डी देने, बारे में ब्राह्मण आत्मा, हो गया। पांच नंबर फरिश्ता, सूक्ष्म बतन वासी, साकारी आकारी, पहले साकारी था अब आकारी, अब मैं सूक्ष्म बतन में पहुंच गया हूं और बाबा वहां पसारे खड़े हैं, बाबा पुकारे आओ बच्चे आओ बच्चे, एकदम अच्छी तरह पंखों को पूरा खोल दो, जल्दी जल्दी उड़ो, आसमान का पूरा मजा लो उड़ने का, है ना। सूक्ष्म बतन में पहुंच गए, चारों तरफ चांदनी चांदनी है, हजारों चंद्रमा की चांदनी वहां जैसे महसूस हो रही है, और बाबा चमकते हुए फरिश्ता रूप में सामने से आ रहे हैं और आके मुझे बाकी पहन ली, बाहों में समा लिया। तो ये सूक्ष्म बतन में पांच नंबर मैं फरिश्ता हूं। फिर छह नंबर, ये सबसे बढ़िया है, छह नंबर परमधाम में, सीधा हाथ ऊपर कर दो, खींच के ऊपर सीधा, जैसे परमधाम में हाथ पहुंच गए, जैसे बाबा भी देख रहे हाथ कहां से आ रहे हैं, मेडिटेशन हॉल से, और सीधा बाबा को पकड़ लो दोनों हाथों से, अच्छी तरह से पकड़ लो, पकड़ लिया, पकड़ा सभी ने, अब खींच लो नीचे, जोर से खींच लो नीचे, भगवान जैसे मेरी मुट्ठी में आ गया, अभी स्वयं उसने कहा भगवान हमारी मुट्ठी में है, संगम पर परमात्मा कहा है हमारी मुट्ठी में है, हाथ नीचे कर लो, नीचे कर लो, अभी छोड़ना नहीं उसको, उसकी सारी शक्ति मुझ में समाई, उसके सारे गुण मेरे में समाये हुए हैं, उसकी सारी पावर मुझ में समा गई है, रग रग में समा गई है, भगवान कहाँ है, मुट्ठी में नहीं, मेरी मुट्ठी में। तो छह नंबर क्या है, भगवान मेरी मुट्ठी में है, महसूस करना है, एकदम कस के पकड़ना है इसको अच्छी तरह से, छूट ना जाए वो, अब छोड़ेंगे नहीं तुझे, पूरा पूरा हिसाब लेके रखेंगे। भक्ति में कहा भगवान जब आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, अब वो मेरी मुट्ठी में, उसने स्वयं मुझे कहा है, तो कहा भगवान मेरी मुट्ठी में है, अब जितना मर्जी पकड़ के रखो उसको, हमारे हाथ में अभी डिमांड तो करनी नहीं है कुछ भी अभी अब जब खुद ही हमारे हाथ में तो डिमांड की तो बात ही नहीं रही कुछ। नहीं छोड़ना क्यों है उसको, छोड़ना ही नहीं अभी तो आज छोड़ना नहीं है जब तक फुल चार्ज ना हो जाए, पकड़े रखो उसको, पकड़े रखो, थोड़ा रहम करना पड़ेगा ना, भगवान भी हमारे पर रहम करता, थोड़ा तो उसके ऊपर भी करना पड़ेगा। हाँ 5,000 साल के बाद मिला तो इतनी जल्दी थोड़ा छोड़ देंगे, गिन गिन के हिसाब लेंगे, उसने खुद कहा हुआ है, मूल्यों में अव्यक्त वाणी में सारा हुआ है। तो छह नंबर क्या है, भगवान मेरी मुट्ठी में है, अब भगवान मेरी मुट्ठी में तो रग रग में समा गई उसकी सारी पावर, ठीक है। तो तीन नंबर क्या था, चार नंबर क्या था, बारे ब्राह्मण करके दिखाओ जोर से, धीरे ऐसे ऐसे नहीं, बाबा की पावर आए और ऐसे ऐसे करें, अच्छी तरह होने चाहिए। और पांच नंबर, हाँ अच्छी तरह बांह खोलो, एकदम अंग अंग हमारे एकदम शुद्ध हो जाएंगे, वो सुप्रीम सर्जन है उसकी सारी पावर हमारे में समा गई है। छह नंबर आकर के करना है अभी वो, क्योंकि भाषण बहुत कर लिया, अभी प्रैक्टिकल में करना है, तो खींच के खींचो उसको, फटाफट खींच लो, कहीं दूसरे सेंटर वाला आके खींच लेगा तो, इसलिए पहले पहले खींच लो आगे। तो छह हो गया। सात नंबर बुरा नहीं देखेंगे आज से, प्रतिज्ञा करो, समय की पुकार है कि आज से बुरा नहीं देखना है, ये आंखें भगवान को दी हुई हैं, परमात्म शक्ति इन आंखों में समाई हुई है, परमात्म गुण इन आंखों में समाये हुए हैं, परमात्म प्योरिटी इन आंखों में समाई हुई है। इसलिए आज इन आंखों से आज के बाद बुरा नहीं देखेंगे। जहां भी ये आंखें पड़ेंगी, अगर बुराई पर भी पड़ती है, इन आंखों से निकली हुई दृष्टि के वाइब्रेशन वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर देंगे। तो 7 नंबर क्या हो गया, बुरा नहीं देखेंगे। 8 नंबर बुरा नहीं बोलेंगे। देखो आप मुख्य ऊपर बुरा नहीं बोलेंगे। इस मुख से क्या बोलेंगे, वरदानी बोल निकलने चाहिए, सुखदायी बोल, उमंगोत्साह वाले बोल, दूसरों को हिम्मत देने वाले बोल, कटाक्ष करने वाले बोल, कटाक्ष करने वाले बोल। तो अच्छा हाथ रखे इसलिए बोल नहीं पा रहे आप। तो ऐसे बोलने निकलने जिससे किसी को दुख हो। मीठे बोल, कितने मीठे, बहुत मीठे, मीठे बोल निकलने चाहिए, सुखदायी बोल। 9 नंबर बुरा नहीं सुनेंगे, इन भगवान का ज्ञान ही सुनेंगे, एक कान भी हमारी शुद्ध हो जाएं, क्योंकि संसार की सारी बातें दिन में कानों में पड़ेंगी, लेकिन भगवान की बातों को हमने सवेरे अच्छी तरह से सुन लिया है, कानों की शुद्धि हो गई है, तो संसार की दूसरी बातें बाबा कहते जो सुनते वो नहीं सुनो, उत्तम अनुभूति होगी। नहीं तो एक बार कोई खराब बात सुनी और हमारे अंदर ही छप जाती है, चल जाती है। इसलिए सवेरे सवेरे इन कानों का शुद्ध कर देना है, अपने सारे पुर्जों को खोल के ना, कान आंखें वाखें सब निकाल के बाबा के आगे रख देनी। वैसे नहीं करना, प्रैक्टिकल में ऐसे इमर्ज करना है, सारे कर्मेंद्रियां निकाल के उसके आगे रख देनी है, और साथ में मोबाइल भी रख देना है, उसको पहले रख देना। हाँ, हाँ तो डांट खाई अच्छा हुआ ना, कुछ तो खाया आपने। तो 9 नंबर बुरा नहीं सुनेंगे, पक्की होगी 9 बातें। 1 नंबर क्या था, अभी बोलना नहीं आपको, अभी करके दिखाना, कोई मुख से बोलना नहीं है, और फटाफट करके दिखाना, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। 1 नंबर बोलना नहीं मुख से, 1 नंबर फिर बोल, 1 नंबर 2 3 अगर किसी ने हमको 4 गालियां दी होती तो 4ों की 4 याद रहती हमको, अगर किसी ने 4 खराब बातें बोली होती तो 4ों की 4 याद रहती है, और यहां 30 बार भूल गया हम। तो 3 नंबर काजल, और 4 नंबर 12 में ब्राह्मण आत्मा, और 5 फरिश्ता, 6 खींचो बोलना नहीं मुख से करना है अभी, 7 8 8 है मुख पर बुरा नहीं बोलना, 9 तो पक्के हो गए 9, फिर 10 11 12 दानी महादानी वरदानी। तो दानी का एक्शन कैसे करेंगे, ऐसे कि ऐसे दानी, ऐसे ये दानी है, ठीक है। तो दानी का एक्शन करो, इधर उधर नहीं, किसी की चीजें उठा के दूर रख देनी, ऐसी खाली एक्शन ही करना। 10 दाने 11 महादानी, लक्ष्मी के हाथ से क्या बरसा है, सोने के सिक्के, यहां से डायमंड हीरे रतन निकल रहे हैं, तो 10 11 महादानी, 12 वरदानी, तो फिर से 10 दानी 11 महादानी 12 वरदानी, फिर 13 14 15 13 में दुर्गा, आजकल दुर्गा के दिन चलेंगे ना, अभी कलकत्ता में तो इतने बड़े बड़े पंडाल, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े पंडाल बने हुए हैं, अभी हम गए थे बात देख के आए थे, तो बड़े बड़े पंडाल बने, तो 13 नंबर में आज कोई कोई माते तो प्रैक्टिस लग ही रही है, तो अच्छी तरह सब, ये तो सबके लिए ही है, भाई और बहन से भी परे उठना है, दुर्गा सभी है, तो सब करो, कौन हूं मैं, एक्शन करो सभी, दुर्गा 13 13 13 नंबर दुर्गा, 14 नंबर अंबा, तपस्वी मूरत, और 15 नंबर काली। सब जीव निकालो बाहर, क्या क्या खा रहे पता चलेगा। कौन हूं तेरा? 15 नंबर काली हूं। काली कौन सी? कलकत्ते वाली। तेरा बाहर ना जाए खाली। हाँ, इसलिए तो वो किया, आप उधर आए हैं इसलिए। तो 13 नंबर, 14 नंबर अंबा, 15 नंबर। तो जीभ निकालनी है ना, बोलना नहीं, वही तो बात है। 16 नंबर मेरा बाबा, मेरा बाबा मेरे दिल में है। बाबा कहते हैं, अगर कोई पूछे बाबा कहां, तो क्या कहते? दिल में समाया हुआ है। तो मेरा बाबा, अब ये दिल में आ गया, तो थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा ना। दिल में आ गया तो महसूस करो, अपने दिल पर हाथ रखो और देखो बाबा दिल में अंदर में घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है और दिल को स्पर्श कर रहा है। जैसे महसूस करो, फील करो उसको, फील करो, फील करो, फील करो, जैसे हीलिंग एनर्जी महसूस हो रही है। दिल आराम, दिल रुबा, शिव बाबा मुझ में समाया हुआ है, मेरे दिल में समाया हुआ है। तो 16 नंबर मेरा बाबा मेरे दिल में है। 17 नंबर, 17 नंबर क्या है? 28 तारीख की मुरली की लास्ट लाइन थी। ये सारे ज्ञान, ये सारे एक्शन मुरलियों में आते हैं सारे, क्योंकि जब तक ज्ञान को हम एक्शन में नहीं लाते, कर्म में नहीं लाते, तब तक वो याद नहीं रहता है। तो वो था 17 नंबर है, वो सेंटेंस था, अभी हम बच्चे शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी आंतरिक खुशी होनी चाहिए। ये मुझे का लास्ट सेंटेंस था, याद आया किसी को? हाँ, तो अभी हम बच्चे संगम पर, हम बच्चे शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी आंतरिक खुशी होनी चाहिए। लेकिन हैंडशेक हम करते ही नहीं है, खाली सुन लेते हैं। तो करो हेलो, हाय बाबा, हेलो बाबा कैसे हो? बाबा कहते मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ अपना क्या हालचाल है, जो होमवर्क दिया था वो ठीक ठाक किया कि नहीं किया? तो वो करना है, तो बाबा से हैंडशेक करना है और साथ में कुछ विचार चलाने हैं कि जब हम किसी दोस्त के साथ हैंडशेक करते हैं तो हमारी भावनाएं कैसी होती हैं, जब हम बिजनेसमैन से हैंडशेक करते कैसी होती हैं, अभी हम भगवान से हैंडशेक कर रहे हैं। बाबा कहते मैं पक्का सौदागर हूं, मैं तुम्हें सब कुछ लुटाने आया हूं, जो चाहे ले लो, लेकिन सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चाई सफाई से, सारी अपनी कमी। बाबा कहते मैं 5 खोटे सिक्के तो लेता हूं आपसे, तो अपने सारे सिक्के उसको दे दो, खोटे सिक्के जो भी हैं, और उससे अशरफियां ले लो, ज्ञान रत्न ले लो। आज बाबा ने मुरली में कहा, अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरता तो क्या करो? बाबा को याद करो। लेकिन अगली लाइन क्या थी? बाबा घुमा फिरा के वो ही कहता है। अगली लाइन ये थी, अगर बाप पढ़ाई याद नहीं रहती है तो फिर बाप को याद करो। अच्छा, बाप याद नहीं रहता तो फिर शिक्षक को याद करो। अच्छा, टीचर ने जो नॉलेज दी है वो तो बुद्धि में आएगी आएगी, बाबा ने कहा। माना घुमा फिर आगे उसको पढ़ाई समझानी है। क्योंकि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, बिना पढ़ाई के हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। क्योंकि बाबा को भी देखेंगे तो कम से कम वो तो आएगा ना। अगर हम किसी को देखते हैं तो उसके आचरण, उसके संस्कार, उसकी आदतें, वो तो याद आती है, नहीं आती? तो बाबा जो नॉलेजफुल है, क्योंकि सबसे पहली महिमा बाबा की कौन सी है? ज्ञान का सागर है वो, बाकी सारी महिमाएं बाद में है। तो उसका ज्ञान तो याद आना चाहिए ना, तभी तो उससे प्यार होगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। अगर मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार कम है। दिल से बाबा बोलो प्यार की अनुभूति तो कराएगा, लेकिन मुझे गहरी फीलिंग होनी चाहिए, उसके प्यार की गहरी अनुभूति होनी चाहिए, जो हमको पग पग पर वो महसूस होती रहे। वो तभी होगी जब उसके ज्ञान से प्यार है। तो 17 नंबर है हैंडशेक, 18 नंबर परमात्मा शत्रशाय का हाथ निरंतर मुझके मेरे सिर पर है, 24 आवर एवर, सोते समय भी, एवरी टाइम एवरी मोमेंट परमात्मा शत्रशाय का हाथ मेरे सिर पर है। ये करेंगे तो फिर दिन में बार बार याद भी आएगी, इसलिए ये वाली एक्सरसाइज भी जरूर करनी है। इसमें शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, रूहानी भी होगा, जिस्मानी भी होगी, होगी दोनों एक्सरसाइज। फिर 19, 20, 21 इतनी बहुत है, 21 तक ही करते हैं, करने को तो बहुत सारे की जा सकती है। 21 जन्म का, बिल्कुल 19 नंबर मैं महावीर हूं। महावीर का एक्शन कैसे करेंगे? फुलाओ सभी अपना मुंह। हनुमान कैसे मुंह फुलाते हैं? फुलाओ, सब ने फुलाया नहीं, देखो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, नींद चली जाएगी ऐसे। मैं महावीर हूं, उन्नीस बीस, मैं अंगद हूं, पांव अंगद, और इक्कीस इक्कीस मुरलीधर हूं। तो अब फिर से फटाफट करेंगे, एक नंबर बोलना नहीं बोलना नहीं, और कॉपी भी नहीं देखनी अभी। एक नंबर, दो, तीन, चार, पांच, फटाफट करने का, एकदम पंख सारे खुल जाने चाहिए, जो चिपके हुए ना खुल जाने चाहिए। हाँ, हिलाओ अच्छी तरह से। छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, चौदह अंबा पंद्रह, तो निकालो ना, निकाल के नहीं रहे किसने मना किया, बोलना नहीं करना है। पंद्रह 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 पंद्रह, हाँ जब तक पंद्रह पक्का नहीं हो, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, बाईस नहीं है चलो ठीक हो गया। तीन, तीन नंबर क्या था? तीन, तीन फटाफट करेंगे, तीन, हाँ बोलना नहीं, फटाफट करने का। तीन, छह, भगवान मेरी मुट्ठी में, फटाफट खींच देगा उसको। नौ, बारह, बारह बरदानी, बह से बह मिलता है, दस से दह मिलता है, दस दानी बारह बरदानी। पंद्रह, अठारह, राइट राइट, इक्कीस, दो, दो, चार, छः, आठ, हाँ तो मत बोलो ना, कौन मना कर रहा है, हाथ रखो मुख में से, दस, बारह, चौदह, देख लो फटाफट, सोलह, अठारह, एक, स्मृति का तिलक, तीन, पांच, सात, एक कर्मेंद्रियों की ड्रिल है, अगर इसको कंट्रोल होगा तो मन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन सारा दिन शरीर में घूमता रहता है। अगर शरीर की कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ गए तो मन अपने आप ही स्थिर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं बंगाली में बोला देखो इतना तो हम समझ गए, बंगाली में बोला आपने कोई बात नहीं, कोई हाँ कुछ ना कुछ करते रहो, बस कुछ ना कुछ करते रहो दिल करते रहो बस। चलो एक छोटी एक्सरसाइज और करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आप सीधा ही रख लो, एक नंबर उसी को समझ लो। जो अच्छा लगे आप छांट के अलग अलग कर सकते हो उनको। ऐसे बहुत सारी ड्रिल है, साकार ड्रिल करनी है उसको। तो अब हम बोलेंगे एक, पहले हाथ रखो सभी ऐसे, सभी हाथ रखेंगे ऐसे नजदीक बिल्कुल इतने। तो जैसे हम पांच बोलेंगे तो जोर से ताली मारनी, ठीक है? एक नहीं, जब पांच बोलेंगे, एक दो तीन चार छः, आपने गड़बड़ कर दी, पांच तो बोला ही नहीं उन्हें। तो आता है भले, लेकिन हमने बोला जब पांच बोलेंगे तब करना। हाँ चलो फिर से करते हैं, ठीक है? ठीक है करो ऐसे, एक दो तीन चार पच्चीस। पवाला ने सोचा पांच ही बोलने वाले हैं। तो ये तो छोटी छोटी ड्रिल है। तो मुख्य बात है समय की पुकार, एक अंतर हमारे भीतर की दुनिया में देखना है कि जो ब्राह्मण जन्म के बाद मुझे प्राप्त करना था, क्या वो मैंने कर लिया है? क्या वो संतुष्टता है अंदर में? क्या मैं उसको चिंतन कर रहा हूं? वो शरीरी अवस्था की जो गहरी अनुभूति होनी चाहिए वो हो रही है? सेकंड में फुल स्टॉप लगता है? परमात्म प्रदानों का अनुभव होता है? बुद्धि में ज्ञान ठहरता है? अपनी जांच करनी है, स्वयं के निरीक्षक खुद ही बनना है, दूसरा कोई मारा बनेगा नहीं। स्वयं के ऊपर कृपा हमको स्वयं ही करनी है। उसने तो कृपा एक बार कर दी है, सारा ज्ञान उसने हमारे पर बरसा दिया। अब उस ज्ञान का हम फायदा कितना ले रहे हैं? इतनी ढेर सारी मुरलियां हैं, किसी से कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं है अगर मुरलियों में हम स्वयं को डुबा दे दूं। एक भी मुरली अगर पूरी तरह से अच्छी याद हो जाए तो भी बेड़ा पार, लेकिन उसके लिए थोड़ा संकल्प चाहिए। पर चिंतन, पर दर्शन, डिजिटल जो माया की नगरी है, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे दो दो मिनट, एक एक मिनट के, स्पिरिचुअल माया है, स्पिरिचुअल माया, आध्यात्मिक माया है। भले हम क्लास सुनते हैं, सुनते सुनते भी कहीं ना कहीं हमारी फिर उंगलियां कहीं और ही चली जाती हैं। एक सेकंड में एक क्लिक से ब्राह्मण, दूसरे क्लिक से सीधा शूद्र, फिर पता चलते तो सातल में चले गए, फिर उस दुख के साथ होते हैं। इसलिए उससे तो अच्छा है थोड़ा शांति से सो जाओ, सबसे बढ़िया है। अच्छी नींद करेंगे तो योग भी अच्छा होगा। अधिकतर क्या होता है, अगर नींद की जो प्रॉब्लम देखिए, प्राय जब शरीर नींद मांगता है तो सो जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है, वो नींद के समय ही मोबाइल में घुस जाते हैं और फिर दुख की गठरी लेके सोते हैं, फिर सवेरे उन्हीं संकल्पों के साथ उठेंगे, उसी एनर्जी के साथ उठेंगे, वैसे ही फिर हमारी दिनचर्या चालू हो जाएगी, अगले दिन का भी फिर बोझ, फिर पहला तो है ही है। तो आज से जो भी किया सारा यहां भस्म करके जाना है। इस हॉल से निकलने से पहले पहले जितने भी व्यर्थ संकल्प है हमारे, आज सारे इसी हॉल में छोड़ के जाने हैं। ऐसे सोचने यहां जल गए, खाक हो गए, वो भस्मीभूत हो गए, सब विनाश हो गए। वो संकल्प आए, डरना नहीं है, व्यर्थ संकल्प उनको आते तो आने दो, कैसे भी नेगेटिव कुछ भी आ रहे हैं, डरना नहीं है, उनको आने दो, लेकिन उनको भस्म होते देखना साथ में। अगर उनको दबाएंगे तो कल को निकलेंगे वो, इसलिए दबाना नहीं है उस चीज को हमको। अगर चीज हमने दबा के रखी, डॉक्टर को बीमारी बताई नहीं है, तो डॉक्टर शफा कैसे, इलाज कैसे करा, हमारी शफा कैसे होगी, फिर वो उपचार कैसे होगा। इसलिए बाबा कहते योग में बल है, योग से विकर्म विनाश होते हैं, अर्थात वैसे नहीं संकल्प चलेंगे जैसे योग में बैठेंगे संकल्प चलेंगे, लेकिन डरना नहीं है, आने दो, जो भी आने आज ही आने दो, सारे नेगेटिव संकल्प को, जो भी व्यर्थ संकल्प है, इम्प्योर संकल्प, सारे आने दो, लेकिन आज ही उनको देखो वो जल रहे हैं, जल रहे हैं, जल रहे हैं। अपना पूरा फोकस उसके ऊपर करना और साथ में उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए कि हाँ ये जल गए हैं अभी। फिर दोबारा अगर वो संकल्प आता है तो उस संकल्प के साथ आएगा कि संकल्प तो जल गया हुआ है, इसमें तो ताकत ही नहीं है। फिर आता तो फिर आने दो, फिर उसको जला दो। जब बिच्छू अपना बार बार डंक मारता है, वो नहीं छोड़ता, तो हम भगवान के बच्चे, सुप्रीम अथॉरिटी के संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, तो हम क्यों संकल्प से डर जाते हैं? और डर इसी चीज से होता है, कमजोरी इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमने व्यर्थ संकल्प से, हमको बहुत भय रहता है कि आना जाए तो क्या होगा। अरे आने दो, कोई बात नहीं, अंदर हैं तभी तो आएंगे ना। जो चीज हमने बर्तन में भरी वो तो दिखेगी दिखेगी, उसको क्यों छुपाएं हम? उसी को बस छुपाते रहते, छुपाते रहते हैं। योग आए, योग में आए, आने दो उनको, लेकिन भस्म कर दो उनको। दूसरा तरीका है, जो भी संकल्प आते हैं खराब, जो भी है खराब, जितने भी खराब है, लिखो उनको और अग्नि से जला दो उसको। हमारे मन में वो तस्वीर छप जाएगी कि वो तो मैंने जला दिए थे, अभी मेरे हैं ही नहीं है। फिर आते हैं, फिर जला दो उनको, फिर आते हैं, फिर जला दो, जब तक वो खत्म नहीं होते हैं। लेकिन साथ में अब वो व्यर्थ संकल्प तो निकल गए, अंदर में खाली जगह हो गई है, तो कुछ नया भी भरना पड़ेगा। वो समर्थ संकल्प अंदर में भर जाए, निरंतर समर्थ संकल्पों का सूर्य यहां से जगमगाता रहे, समर्थ संकल्पों की किरणें यहां से निकलती रहें। किसी को भी देखे तो हमारे दृष्टिकोण जो है, सामने वाले को भी देखते हमारे शक्तिशाली संकल्प आने चाहिए। जैसे हम स्वयं सोमान की सीट पर सेट रहते हैं, ऐसे दूसरों को भी सोमान की सीट पर सेट होकर ही देखना है। ऐसा नहीं कि मैं तो विश्व कल्याणकारी हूं और ये वाले ऐसे ही हैं, नहीं। भगवान की जिसके ऊपर दृष्टि पड़गी वो ऐसा वैसा नहीं हो सकता है। अगर किसी एक भी आत्मा के प्रति हम ऐसा वैसा सोच रहे हैं, अर्थात हम भगवान से दूरी बना रहे हैं, जिसको भगवान ने चुना है और उसके हम ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उसकी कमी कमजोरी चिंतन कर रहे हैं, वो बेचारे साधना में लगे हुए हैं लेकिन उसका प्रचिंतन कर रहे हैं कि वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसी करती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, अर्थात हम अपने पुरुषार्थ में खुद ही दीवारें खड़ी कर रहे हैं, भगवान से दूर होते जा रहे हैं। प्यार बरसे का कैसे, उस प्यार की किरणें कैसे हमें स्पर्श करेंगी? हम बैठे हैं दीवार के पीछे, सूर्य कैसे हमारे सामने आएगा? इसलिए जो भी है, सारे नेगेटिविटी, सारी अंदर की जो भी खराबियां हैं, सूक्ष्म विसंगतियां हैं, विकृतियां हैं, जो भी इम्प्योरिटी, सारी हम भस्म करके जाना। मधुबन में आने का चांस बार बार नहीं मिलता है। कितना पैसा खर्च किया है आप, कितनी दूर से आए हैं और हमारा ऐसा टाइम चला जाए, गपशप मारने में चला जाए। एक एक टाइम बहुत कीमती है, ऐसा वाइब्रेशन वहां थोड़ा मिलेगा। कितना महानगरों में कितना भीड़ भड़का है, ऐसे वाइब्रेशन मिलेंगे? लेकिन इतना जानने के बाद भी यहां हम सवेरे सवेरे देखते हैं, बातें करना, ये करना, छोड़ दो, कल का दिन हमारे पास में, अभी कल जाएंगे ना आप, तो आज का दिन है, अपने आप को फुल चार्ज कर लेना। उसके साथ जो कमरे में रहता छोड़ दो उसको, वहीं अकेले आओ साधना करने के लिए, भले बाद में मिलते रहो। यहां भी हमने देखा बस साथ में जा रहे, योग करने साथ में, वो चाय पीने, भोजन करने, छोड़ दो अलग अलग, कोई किसी का नहीं है यहां, तो अंत में भगवान भी अपना नहीं है, वो तो भी छोड़ के चला गया, अभी वो केवल हमको कह के चला गया, अभी ये करना तुमको, उसने अपना सब कुछ हमको लुटा दिया है, उसने समाप्ति वर्ष घोषित कर दिया है। इतना सब जानने के बावजूद ही अपने ज्ञान के नेत्र को बंद कर लेते तो इसको समझदारी कैसे कहेंगे? योग को लगाने की चीज नहीं है, योग कोई बैठ, ये नहीं है बैठने की व्यवस्था का नाम योग नहीं है। योग तो हमारी स्मृति से संबंध है, हमारी स्मृति में कौन से संकल्प चल रहे हैं, कौन हमारे मन की भूमि पर कैसे कैसे संकल्प अंकुरित हो रहे हैं, कौन हमारी किसकी याद में हम खोए हुए हैं। और याद वही आता है जिससे हमारा प्यार होता है, याद वही आता है जिससे कुछ प्राप्तियां होती हैं, याद वही आता है जिसने दुख में हमारा हाथ पकड़ा हो। बाबा कहते तुम तो कीचड़ के दलदल में चले गए थे, थोड़े बाल से निकाला बाहर। और हर एक जीवन में ऐसे होगा, घरों में कितनी ज्ञान मिलने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद, ब्राह्मण का जन्म होने के बाद कितनी समस्याएं आई सबको, घर वालों से कितने ताने सुने होंगे, कितना धारणाओं के लिए अपना संघर्ष किया, तो हमारा को वो त्याग तपस्या ऐसे ना चला जाए। वो सब करने के बाद भी अगर हम यहां आकर भी अपने जीवन के महत्व को कम आंके उसका समझ, उसको महत्व ना समझें, तो इस समय भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय है, कोई भरोसा नहीं दरवाजा भी क्रॉस करेंगे। है भरोसा किसी को? पता नहीं कल उठेंगे नहीं उठेंगे। प्रेजेंट में जीना है, अभी का हाथ, अभी का समय मेरे पास में है, बस अभी के लास्ट 5 मिनट मेरे पास में, जो करना कर लो बस। केवल ज्ञान दाता का ज्ञान ही हमारे काम में आएगा। जब भी कोई विघ्न परिस्थिति आती है तो 3 बातें काम में आती हैं। कौन सी? एक तो ज्ञान बल, दूसरा योग बल, और तीसरा दुआएं सबकी। कितनी दुआएं हमने अर्जित की हैं, और दूसरे से दुआएं कम, अपने से कितनी दुआएं मैंने इकट्ठी की हैं, जो मेरे दिल से निकली कि हां जो मुझे करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूं। सबसे पहले तो नजदीक तो मैं अपने पास में रहता हूं ना, मैं अपने आप को कितनी दुआएं दे रहा हूं। दूसरों से दुआएं भले मिले ना मिले, वो अपने आप मिलती रहेंगी, लेकिन स्वयं से सेटिस्फेक्शन कहां है? भगवान हमारी पालना कर रहा है, ज्ञान की पालना, स्थूल पालना नहीं। स्थूल पालना तो संसार में भी होती है, लेकिन जो ज्ञान की पालना, ऐसा ज्ञान कहीं मिलेगा? बाबा कहते बाद में सबसे ज्यादा तड़फन किसको होगी? सबसे ज्यादा तड़फेंगे ब्राह्मण, संसार वाले नहीं तड़फेंगे। तड़फ इसलिए होगी क्योंकि हमको पता है कि ये कर लेना चाहिए था और हमने किया नहीं। तब कहना पड़ेगा अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी भी हमारे पास में इतना समय है, इतना ज्ञान का खजाना, खुला भंडार है। तो 5 नंबर क्या था? तुरंत फटाफट करने का, इधर के पंख नहीं खुल रहे, चिपके हुए हैं। 17 नंबर क्या था? 17 हैंडशेक। इन हाथों को समझा देना कि तेरा रोल नंबर 17 है। इस ब्रिटिश को समझा देना तेरा रोल नंबर 1 है, सिर का रोल नंबर 2 है। जैसे स्कूल में टीचर रोल नंबर करता है, सारे स्टूडेंट का उसको पता होता है, तेरा नंबर क्या है? दुर्गा। 4? हाँ। 5? 5 तो पहले ही गया। हाँ। 2? 12? ऐसे ऐसे करें। बोला कहीं तो तीर तुक्का लग ही जाएगा। कुछ तो होगा, भगवान भी सोचेगा कुछ तो कर रहे, चलो दे ही देता हूं। बारह नंबर प्रधान। 22 नहीं है। देखो जो नहीं है ना वो पक्का याद है, और जो है वो याद नहीं है। जो नहीं है वो याद है, और जो है वो याद नहीं है। होना चाहिए जो है वो याद होना चाहिए, जो नहीं वो ही नहीं होना चाहिए। तो ये ब्राह्मण जीवन का पूरा सुख लेना है, टाइम भी हो रहा है, टाइम ओवर हो गया। तो ये छोटा सा हमको जीवन मिला हुआ है, इसलिए कभी भी खुशी नहीं गवानी है। और खुशी गुम होने के हम कारण अपने अपने सब जानते ही हैं। खुद से प्रतिज्ञा करनी है, खुद से संकल्प करना है। ज्ञान बहुत सरल है, इजी है, योग भी बहुत सहज है, बस थोड़ा सा अटेंशन देने की आवश्यकता है कि जो चीज हमको नहीं करनी है तो नहीं करनी। कुछ दिन करके देखो, अपने आप ही बल प्राप्त होगा, एक अलग से जीवन की महसूसता होगी, ऊर्जा जैसे बरस रही है हमारे ऊपर। क्योंकि ज्ञान सूर्य वो तो दे रहा है, लेकिन बादल हमारे संकल्पों के ही बादल आगे आ जाते हैं। वो तो ऊपर से धूप दे रहा है सूर्य, लेकिन अगर छत के नीचे थोड़ा आएंगे वो, तो हम अपने ही व्यर्थ संकल्पों की छत तैयार कर देते हैं, फिर उसकी ऊर्जा कैसे आएगी? अर्थात उसका ज्ञान हमारे पर बरसता रहना चाहिए, कुछ ना कुछ बाबा कहते ज्ञान की बूंदें टपकती रहनी चाहिए। इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है, अगर इस ज्ञान से हमारा प्यार नहीं है, उसका चिंतन नहीं है। और चिंतन करना बड़ा आसान काम है, सबसे आसान काम है ज्ञान का चिंतन करना। और सबसे ज्यादा चिंतन करना किसको आता है? चिंतन करना सबसे ज्यादा किसको आता है? माताओं को, भाई बोल रहे हैं, माताओं को आता है। हम नहीं बोल रहे, भाई बोल रहे होते थे। क्या प्रूफ है उसका? दो माताएं बैठती है तो टाइम का पता नहीं चलता उसका, लेकिन ऐसा नहीं है, भाई उससे आ गए आजकल। क्योंकि पहले तो शास्त्र किसने भाइयों ने बनाया ना, अगर मातों ने बनाया तो भाइयों की सारी गिलाने की होती। तो ये समय की पुकार यही है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इस ब्राह्मण जीवन का आनंद लें। पर चिंतन, पर दर्शन, ये जो बीमारियां हैं जिनसे हम अपने आप को ग्रसित करते रहते हैं, आत्मा को दुख, पीड़ा, एंग्जाइटी, बेचैनी मिलती है, इन सब का डॉक्टर हमें खुद ही बनना है। और वो सारी दवाइयां बाबा ने हम सबको दी हुई है। बाबा कहते रोज ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहो, रंग बिरंगी टेबलेट खाते रहो, और दूसरी बीमारियों में तो आराम से टेबलेट खा लेनी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ज्यादा ज्यादा योग का प्रयोग करना है और उसके ऊपर फेथ सही निश्चय जाइए कि हाँ, क्योंकि एक एक संकल्प में बहुत शक्ति है। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, धैर्यता चाहिए। तीन बातें और जरूरत है इस ब्राह्मण जीवन में, जो बाबा ने कुछ दिन पहले साकार मूल्य में भी कही, गंभीरता, धैर्यता और समझ। धैर्यता चाहिए और गंभीरता चाहिए और समझ चाहिए, हर चीज की अंडरस्टैंडिंग। सामने वाले जिससे हम सुनते हैं वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ में हमको अपना भी दिमाग लगाना है, समझ। क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल का हमको पता नहीं, उस माहौल का आपको पता है। आपको वहां कैसे चलना है वो आपको डिसाइड करना है, उसका फैसला आपको करना है। ऐसा नहीं हम तो जो यहाँ कह रहे हैं वो आपको हो ही जाएगा, आपकी दिनचर्या अलग है। हम कहें आपको सवेरे 3:30 बजे उठना है, लेकिन हो सकता है आपकी नाइट की ड्यूटी हो, तो आपको उसी अनुसार सेट करना है। पकड़ नहीं लेंगे मुझे 3:30 बजे उठना है, अगर आपकी नाइट की ड्यूटी है 4:00 बजे तक है तो क्या करेंगे? योग युक्त हो, किसे बात करो, सो जाओ बाद में, लेकिन जब उठो तब तुम्हारा पावरफुल योग हो, उसमें नींद नहीं आनी चाहिए। फिर निद्रा जी, सोना तो अच्छी तरह सो लेने का है, और टाइम तो सोने के लिए हमारे पास बहुत होता है, लेकिन सोने का टाइम हमारा मोबाइल खींच लेता है, इसलिए स्वयं पर अटेंशन रखने की आवश्यकता है। हम सभी तो समझदार हैं ही है, बाबा का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसको समझ नहीं है, ज्ञान भी सबके पास खूब है, प्रैक्टिकल में खुद को खुद ही करने की आवश्यकता है। ठीक है, ओम शांति। चार बिना बोले ताली बज गई। वो
परम
सुशील भाई जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, हाथ हिला के धन्यवाद करेंगे।